नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के विकास को गति देने के साथ साथ डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। जम्मू और कश्मीर के मैदानी इलाकों और कश्मीरी घाटी के ऊपरी इलाकों में सुबह से बारिश और बर्फबारी जारी। और इंडोर शॉटपुट में भारत की कृष्णा जयशंकर ने 16 मीटर दूर गोला फेंकने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस पर गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासन गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्यजीव वार्डन और सचिवों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बोर्ड की बैठक में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये बोर्ड वन्यजीवों तथा वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने में काम करते हैं और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं हैं। वन्यजीव दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन वन्यजीवों और पौधों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने देश में वन्यजीव संरक्षण के लिए कई पहल की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से कई नीतियों, विधायी उपायों और पहलों की व्यापक रूपरेखा बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दोहराने का आग्रह किया है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने वन्यजीवों के संरक्षण और संरक्षक में भारत के योगदान पर भी गर्व व्यक्त किया। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ग्रह को असाधारण बनाने वाली समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में सभी के समर्पण की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री खांडू ने लिखा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में प्रत्येक जीवित प्राणी की एक अनूठी भूमिका है। भविष्य के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए एक स्थायी और संपन्न ग्रह की दिशा में काम करना जारी रखे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र न केवल देश के विकास में योगदान करता है, बल्कि ये क्षेत्र ग्रामीण विकास और छोटे किसानों की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में साधारणीयता और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र देश के पोषण का भी ख्याल रखता है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि देश में दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 63% से अधिक की वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये कार्यशाला सहकारिता मंत्रालय और डेयरी मंत्रालय की पहल और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ बैठक की और देश के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि सेमीकंडक्टर, AI, स्वर ऊर्जा, डिजिटल गतिशीलता और रक्षा क्षेत्र में भी चर्चा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश JV पारदीवाला और R महादेवन की एक पीठ ने ये याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले की घोषणा करते हुए न्यायाधीश महादेवन ने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ न्यायिक सेवाओं में भर्ती के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च तक होगा। सरकार महीने के अंत में 2025-26 का बजट पेश करेंगी। ये जानकारी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी। उन्होंने लोगों को बजट 2025 के लिए अपने सुझाव भेजने के लिए एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी भी जारी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बजट के महत्वपूर्ण मुद्दे भी लोगों के सामने रखे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के औपचारिक भाषण के साथ शुरू हुआ। उपराज्यपाल ने अभिभाषण में कहा है कि यह बजट ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में किसी निर्वाचित सरकार द्वारा 7 वर्षों में पेश किया गया पहला बजट है। श्री सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज जम्मू कश्मीर बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में ये बात कही। दिल्ली विधानसभा में आज सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के बारे में CAG रिपोर्ट पर चर्चा फिर से शुरू की गई। यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश की थी। चर्चा के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि CAG रिपोर्ट में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। भाजपा के अन्य विधायकों ने भी इस मामले की जांच की मांग का समर्थन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अगले 2 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री राजनाथ ने देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ निष्फल खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की है। ये प्रतिक्रिया यूक्रेन को समर्थन देने के संबंधी इच्छुक लोगों के गठबंधन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की घोषणा के बाद आई है। वित्त मंत्री स्टॉक बेनसेट ने रूस के साथ एक शांति समझौते का सुझाव दिया। अमेरिका इस समझौते के साथ आगे बढ़े या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस एक संघर्ष विराम समझौते पर विचार कर रहे हैं। अकादमी अवार्ड्स का 97वां संस्करण लॉस एंजलिस में संपन्न हो गया। निदेशक शॉन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अनोरा 5 ऑस्कर जीतकर इस समारोह की सबसे बड़ी विजेता उभर कर सामने आई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित पश्चिम हिमालय क्षेत्र में आज व्यापक वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने यह बात कही और कहा कि अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। जम्मू कश्मीर के मैदानी और ऊपरी इलाकों में सुबह से बारिश और बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 से 9 मार्च तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे, सियांग, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग और तिरप जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार ने देश में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय कानूनों में संशोधन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। श्री मेघवाल ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में महिलाओं के संबंध में साइबर कानून और साइबर जागरूकता कार्यक्रम पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं के लिए साइबर कानूनों से जुड़े प्रमुख सुधारों पर चर्चा करना है। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि महिलाएं कानूनी सुरक्षा की कमी के कारण साइबर अपराधों का शिकार होती है। सुश्री राहटकर ने बताया है कि आयोग ने अब तक अपने 6 क्षेत्रीय परामर्शों के माध्यम से सभी साइबर कानूनों की व्यापक समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यशाला में सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों सहित कई हितधारक मौजूद रहे। और भारत के कृष्णा जयशंकर 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने इंडोर शॉटपुट में 16.03 मीटर की दूरी तक गोला फेंका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के विकास को गति देने के साथ साथ डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जम्मू और कश्मीर के मैदानी इलाकों और कश्मीरी घाटी के ऊपर सुबह से बारिश जारी और इंडोर शॉट पुट में भारत के कृष्णा जयशंकर ने 16 मीटर दूर गोला फेंकने वाली पहली भारतीय बनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।